Let me ask you a question this morning. Are all Christians called to go out and preach the gospel? Are all Christians gifted to go out and preach the gospel?
क्या सारे विश्वासियों को इस बात का दान मिला है कि वो बाहर जाकर के प्रचार करें?
What is the responsibility of all Christians in regards to their relationship to the world?
लेकिन सारे विश्वासियों की जिम्मेदारी क्या है उनके संसार से लोगों के संबंध में?
Look in the book of Acts.
फिर तो काम की पुस्तक में देखें.
And chapter 8. How do we apply a principle of interpretation to the Word of God?
व्याख्या के सिद्धांत को हम कैसे लागू करेंगे यहाँ पे परमेश्वर के वचन में?
Acts chapter 8, verse 1.
फिर तो काम उसका आठवां अध्याय का पहला पद.
Stephen has been stoned.
स्टीफन उसका पत्थरवाह हो गया है.
And it says verse 1, Saul was in hearty agreement with putting him to death.
और यहाँ पहले पद में लिखा है कि शाऊल भी उनसे पूरी तरह से सहमत था स्टीफन के मारे जाने में.
And on that day a great persecution was against the church and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria.
और उस दिन एक बड़ा विरोध हुआ कलीसिया के प्रति और संपूर्ण कलीसिया यहूदिया और समरिया के समस्त देशों में तितर बितर हो गया.
Look at verse 4.
चौथे पद को देखिए यहाँ पे.
Therefore those who had been scattered about went out and preaching the word.
और इसलिए चौथे पद में लिखा है कि अतः जो तितर बितर हुए थे घूम घूम कर वचन का प्रचार करने लगे.
Many people say this.
बहुत सारे लोग ये कहते हैं.
It's the responsibility for all Christians to go out and preach the word.
वो कहते हैं कि सारे विश्वासी की जिम्मेदारी है कि उनको बाहर जाकर प्रचार करना चाहिए.
And they look at this verse and say this verse proves that truth.
और वो कहते हैं कि ये वचन दिखाता है कि ये बात सत्य है.
How would you answer that question?
आप कैसे उत्तर देंगे इस प्रश्न का?
Are all Christians called to go out and to preach the gospel?
क्या सारे विश्वासी को बुलाया गया कि वे बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार करें?
Based on this verse.
इस पद के आधार पर.
When we answer that question, we need to determine two things.
जब हम इस प्रश्न का उत्तर दें तो हमें दो बातों को ध्यान में रखना है.
Number one, what is the historical context?
हमको ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक संदर्भ क्या है.
And number two, what does the rest of the scriptures say?
और दूसरी बात संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में.
Now, what is the historical context?
ऐतिहासिक संदर्भ क्या है यहाँ पे? ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पे?
Look at verse 1.
पहले पद में क्या हो रहा है?
A great persecution.
एक बड़ा कलीसिया के ऊपर घोर सताव हो रहा है.
Now all of these people that come to Jerusalem.
ये सारे लोग यरूशलेम में आए थे.
They had been wonderfully converted by the grace of God.
ये तो परमेश्वर के द्वारा बड़े ही अद्भुत.
But it wasn't God's intention for them to remain in Jerusalem indefinitely.
लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वे लोग हमेशा तक अनिश्चित काल तक की यरूशलेम में बने रहें.
It was God's purpose that they go back out to different areas and even back out to their own home.
और ये परमेश्वर का उद्देश्य था कि वे लोग वहां से निकल करके दूसरे क्षेत्र में जाएं और यहां तक कि अपने घरों में जाएं जहां से वो लोग आए थे अपने स्थानों से.
For example, Paul had never been to Rome.
और उदाहरण तौर पर पौलुस कभी रोम नहीं गया था.
How did the Roman church begin?
लेकिन रोमियो की कलीसिया आरंभ कैसे हुई?
You remember what it said in Acts chapter 2?
याद है आपको पवित्र काम से दूसरे अध्याय में क्या
कहा गया? There were people gathered from all over Asia Minor and Europe.
वहाँ पे था कि यूरोप से और एशिया माइनर तुर्की से बहुत सारे लोग थे वहाँ पे.
Some had come as far as way as from Rome.
कुछ लोग रोम इतनी दूर यहाँ तक रोम है वहां से आए थे.
So what probably happened? How did the church in Rome begin?
तो फिर क्या हुआ वहाँ पे रोमियों की कलीसिया कैसे आरंभ हुई शायद?
Exactly, they went back in the providence and purpose of God to their own locations and they preached and taught the Bible, the gospel.
तो ये लोग जो लोग रोम से आए थे वो लोग वापस गए और उन्होंने बाइबल से सिखाया प्रभु के वचन को.
So listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
The context is unusual and extraordinary.
जो संदर्भ है बड़ा ही विशेष है विचित्र है और अप्रत्याशित है.
All these people are gathered together.
सारे लोग जमा हैं यहाँ पे.
God does not intend them to stay there forever.
परमेश्वर की मंशा नहीं कि वो लोग हमेशा तक वहाँ पे रहें.
And in the providence of God, He brings a great persecution.
और परमेश्वर अपने योजना में होकर के प्रावधान में होकर के एक बड़ा सतावल भेजता है.
And the result is that the believers go back out to different towns and places, including their own hometown, and they preach and share the gospel.
और फिर सतावल की वजह से ऐसा होता है कि वहाँ पे वे लोग वापस जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं अलग अलग जगहों पे, यहाँ तक कि अपने स्वयं के घरों से जहाँ से वे लोग आए थे.
Now the word in verse 4 is not for preaching, not the formal word for public proclamation by an ordained preacher.
और यहाँ पे जो प्रचार का शब्द है, यहाँ पे ये वो शब्द नहीं उपयोग किया जाता जो अक्सर औपचारिक तौर पे कलीसिया के सेवक लोग प्रचार में लगे होते हैं उनके लिए नहीं शब्द इस्तेमाल.
It is the word that means the ordinary sharing and communicating of the gospel by ordinary believers.
और यहाँ पे बात हो रही है सामान्य विश्वासियों के द्वारा सामान्य तरीके से आम लोगों को सुसमाचार बांटना. ये वहाँ पे वो वाली बात हुई, प्रचार की बात नहीं हुई, लेकिन सामान्य लोगों के अपने जीवन में सुसमाचार जाके बांटने की बात हो रही
है. What is the ministry of the church to the outside world?
जो कलीसिया की जो सेवकाई है बाहर की दुनिया के लिए क्या है?
Now remember we said the church's ministry is to glorify God.
आपको याद हमने कहा था कलीसिया की मुख्य सेवा यह है कि वो परमेश्वर को महिमा दे.
And it glorifies God by doing three primary things.
वो परमेश्वर को महिमा देता तीन मुख्य चीजों करने के द्वारा.
The church's ministry goes in three directions.
कलीसिया की सेवा तीन दिशा में जाती है.
And remember we told you before.
याद है आपको हमने पहले बताया था.
What are those three directions?
वो तीन दिशा क्या है?
Number one is up.
सबसे पहले ऊपर की ओर है.
Number two is in.
कलीसिया की सेवा ऊपर की तरफ.
Number three is out.
और फिर बाहर की तरफ तीन दिशा में.
Upwards in establishing the worship of God.
तो कलीसिया की सबसे पहली सेवा ऊपरी दिशा में होनी चाहिए, मतलब परमेश्वर की महिमा आराधना को स्थापित करना.
Inwardly in the edification of the people of God.
लेकिन फिर दूसरी बात परमेश्वर के लोगों को भीतरी तौर पे, मतलब अंदर की ओर जो भीतर हैं उनको मजबूत करना, दृढ़ करना कलीसिया के लोगों को.
And outwardly in the proclamation of the gospel of God.
और फिर जब भीतरी कलीसिया के लोग मजबूत होंगे तब फिर सुसमाचार प्रचार की उद्घोषणा बाहर की ओर की जाएगी.
If you are a leader in the church,
अगर आप कलीसिया में एक प्रचार
you are to lead the church in exercising these three ministries for the glory of God.
तो अगर आप कलीसिया के अगुए हैं तो आपको इन तीन दिशाओं में परमेश्वर की महिमा के लिए सेवाओं को स्थापित करना होगा कलीसिया के संदर्भ में.
The church's first responsibility is to establish the worship of God.
तो कलीसिया की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि परमेश्वर की आराधना स्थापित की जाए कलीसिया में.
It is a spiritual house.
ये क्योंकि एक आत्मिक घर है.
It is made up of living stone.
क्योंकि ये जीवित पत्थरों से बना
है. We are a spiritual priesthood.
हम लोग आत्मिक याजक हैं.
And we offer up sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
और हम सब लोग वो बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा जो कि ग्रहण योग्य है.
नंबर टू,
दूसरी बात,
the church also has a ministry inwardly.
और दूसरी बात कलीसिया की सेवकाई भीतरी तौर पे है.
And it exercises that ministry in two primary ways.
और वो भीतरी सेवा को दो मुख्य तरीके से उसको लागू करता है.
Number one, by the special ministry of pastors and teachers who instruct the people of God.
सबसे पहली बात कलीसिया में दो तरीके से सेवा की जाती है. पहली बात कलीसिया के अगुए और शिक्षक लोग शिक्षा देने के द्वारा ये करते हैं.
Ephesians chapter 4.
Ephesians 4.
He gave some as pastors and teachers to teach and equip the church.
और परमेश्वर ने कलीसिया को कुछ पासवान या प्राचीन और शिक्षक दिए हैं ताकि वो कलीसिया को तैयार करें सेवा के लिए युक्त करें.
And number two, by the ordinary ministry of all believers in a work of mutual edification.
और दूसरी बात कलीसिया के सामान्य साधारण विश्वासियों की सेवा है कि वे एक दूसरे को उत्साहित करें, वृद्धि करें आत्मिकता में, एक दूसरे को बढ़ाएं.
So Paul says that every joint supplies a part of the body and it builds up itself in love.
और पौलुस कहते हैं कि हर एक अंग देह को दृढ़ करने के निर्माण करने के लिए अपना योगदान देता है.
And it does that by a mutual ministry of one to another.
और ये ऐसा एक दूसरे की सेवा करने के द्वारा ऐसा संभव होता है.
That is how the church edifies and builds up itself.
और इसी तरह से कलीसिया उन्नति करती, वृद्धि करती और आगे बढ़ती है.
And if you are a teacher, preacher, or pastor in the church, you have a great responsibility.
और अगर आप शिक्षक हैं, पासबान हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.
You are to teach, instruct, and feed the people of God.
आपको लोगों को शिक्षा देना है, निर्देश देना है परमेश्वर के लोगों को.
And you to exhort and encourage them in regards to their ministry to one another.
और आपको उनकी सेवा के संदर्भ में उनको उत्साहित करना है, उनको आगे बढ़ाना है.
No one is to sit passively in the church and simply receive the teaching.
कलीसिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली बैठ करके कलीसिया केवल शिक्षा को प्राप्त करे और उसके प्रत्युत्तर में कुछ करे नहीं सेवा.
They have to receive the word of God so they can be strong and then minister to one another.
कलीसिया में सबको सेवा को वचन को प्राप्त करना है और वचन को प्राप्त करके वो जब मजबूत होते हैं तो उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे के जीवन में निवेश करें, सेवा करें.
We've mentioned many times here the concept of one to another.
और हम लोग बार बार बात कर चुके हैं नए नियम में इस सिद्धांत के बारे में, एक दूसरे के बारे में.
And there are many exhortations in the word of God for the members of the church to exercise this ministry one to another.
और परमेश्वर के वचन में कई जगह अलग अलग जगह उत्साहित किया गया है हमको एक दूसरे के जीवन में सेवा करने के लिए, निवेश करने के लिए.
For example, let's mention at least 10 here very quickly.
और जल्दी से 10 बातें हमने बता दी एक दूसरे को नए नियम में कहां कहां वर्णन किया गया है. जल्दी से एक दूसरे के बारे में कहां वर्णन किया नए नियम में, कोई एक दूसरा? हाँ जी,
pray for one another.
क्या लिखा है, क्या लिखा है?
एक दूसरे को भले कामों के लिए प्रेम के लिए उत्साहित
करें. Encourage one another for good works. हो गया. Think about others rather than yourself. हाँ जी, और love one another. Build one another up. Bear one another's burdens. क्या है? Bear one another's burdens. और कोई? एक दूसरे को. कोई और है एक दूसरे को? चिताना. Forgive one another. चिताना. Warn one another. क्या है? एक दूसरे के लिए. अच्छा ठीक है. ओके, कोलोसियंस, टीच वन अनदर. हिब्रूज, डोंट स्टॉप मीटिंग विद वन अनदर.
ऑल दैट्स 10.
Keep fellowship, stay in fellowship with one another.
Well, that's at least 10, but listen, there's about 10 more.
Oh, look, that's all.
And if you are a leader in the church, you are responsible to teach the people of God their ministry one to another.
और आपकी जिम्मेदारी की आप जाए 10 और सूची बनाए, क्योंकि आपको अगुआ होने के नाते लोगों को सिखाना है एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारी है कलीसिया के भीतर.
So the church's ministry, number one, is upward in establishing the worship of God.
तो कलीसिया की सेवा सबसे पहले ऊपर की दिशा में है, मतलब परमेश्वर की आराधना को स्थापित करना है.
Inward in the edification of the people of God.
और भीतरी दिशा में, मतलब परमेश्वर के कलीसिया के लोगों को दृढ़ करना है, बनाना है, उन्नति करना है उनकी.
And that is by two primary ways.
और लोगों की उन्नति दो मुख्य तरह से होती है.
The special ministry of pastors and teachers to instruct the people of God.
पासवानों और शिक्षकों की विशेष सेवा के द्वारा, जिसमें लोगों को निर्देश दिखाया
जाता है. And all the people of God in the ordinary ministry one to another.
और फिर दूसरी तरह से कलीसिया के सामान्य लोगों की सेवा को एक दूसरे के प्रति.
1 Peter 4.
पहला पत्रस उसका चौथा.
As each one has received a special gift, let him use it in ministering one to another.
और जैसे जैसे लोगों के पास परमेश्वर ने दान दिए हैं, उनको एक दूसरे के जीवन में उपयोग करिए.
And the manifold grace of God.
परमेश्वर के अत्यंत अनुग्रह में होकर के.
And the ultimate end is the building up of the body of Christ.
और अंततः उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की देह दृढ़ की जाए.
For the glory of God.
परमेश्वर की महिमा के लिए.
Your responsibility.
आपकी जिम्मेदारी.
To teach the people the word of God.
परमेश्वर के लोगों को वचन सिखाइए.
Number 2, to exhort and instruct them regarding their responsibility to exercise their gift in the church and ministering to one another.
दूसरी बात, आप उनको निर्देश दें, उनको सिखाएं कि वे अपने वरदानों को उपयोग करें एक दूसरे के जीवन में, कलीसिया के संदर्भ में निवेश करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए, बढ़ाने के लिए.
Upward.
ऊपर की तरफ.
Inward.
भीतर की तरफ.
And outward.
बाहर की तरफ.
The church is to have a ministry to the lost world.
और कलीसिया की सेवा ना सिर्फ ऊपर की तरफ परमेश्वर के लिए, ना सिर्फ एक दूसरे के लिए, लेकिन बाहर संसार के लोगों के लिए, जो लोग खोए हैं उनके लिए भी है.
And it does that in two primary ways.
और वो हम बाहर के लोगों के लिए सेवा दो तरीके से करते हैं.
नंबर
वन, पहली बात,
टू कमीशन एंड सेंड आउट गिफ्टेड कॉल्ड मेन टू गो आउट प्रीच द गॉस्पेल एंड एस्टैब्लिश चर्चेस एंड मेक डिसिपल्स.
सबसे पहले जो वरदान पाए हुए लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, जो जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, उनको बुला करके फिर उनको निर्देश देना और उनको बाहर भेजना सेवा करने के लिए.
Number two,
दूसरी बात,
the ordinary witness of all believers out in the midst of a sinful world.
और जो सामान्य विश्वासी हैं उनको बाहर संसार में एक सामान्य गवाह साक्षी के रूप में रहना है.
Is every believer called to go out and formally preach the gospel?
क्या हर एक विश्वासी को बुलाया गया है परमेश्वर की ओर से कि वे औपचारिक तौर से जाकर के सुसमाचार प्रचार का कार्य करें? प्रश्न है भैया, ये प्रश्न है, फिर से पूछ रहे हैं, क्या हर एक विश्वासी को, हर एक सामान्य विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाया है कि वो औपचारिक तौर से बाहर जाकर के सुसमाचार प्रचार का काम करें? हर एक विश्वासी को, क्या हर एक, फिर से सुनिए ध्यान से, उत्तर देने पर ध्यान से.
Is every Christian called and gifted by God to go out and make disciples and plant churches?
क्या हर एक विश्वासियों को, हर एक सामान्य विश्वासियों को परमेश्वर ने बुलाया है और वरदान दिया है कि वो बाहर जाकर के सुसमाचार प्रचार करे, कलीसियाओं की स्थापना करे और शिष्य बनाए? तो बदल गया, तो पलट गया.
ऐसा है कि जैसे आप बता रहे हैं, वही सीखे गवाही के द्वारा लोग बता सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन गिफ्ट देकर अभिषेक करके नहीं.
लेकिन ज्यादातर लोग आजकल क्या कह रहे हैं सब जगह, बहुत दबाव है ना इस बात का कि नहीं है, हर मीटिंग जाए सब जगह, जाओ जाओ सबको भेजो 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 भेजो, पीछे पड़े हुए जाओ, सभी जाओ सभी जाओ सभी जाओ. हम हैं डेविड भैया, सबको भेज देते ना संडे के बाद, सब लोग जाओ चर्च, गवाही बांध लेंगे.
मत्तियुस
का 28 अध्याय क्या
कहता है? Jesus said, all authority has been given to me in heaven and earth.
संपूर्ण स्वर्ग में, पृथ्वी स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार मुझको दिया, संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझको दिया गया.
Go out and preach the gospel to all creatures.
और जाओ सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ.
And make disciples of all the nations.
और हर एक जाति के लोगों को शिष्य बनाओ.
Now what does Jesus say are the two primary things we do when we make disciples?
और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा, दो मुख्य चीजें हम क्या करते हैं जब हम शिष्य बनाते हैं, इस पद के अनुसार दो मुख्य चीजें क्या करते हैं जब हम शिष्य बनाते हैं?
नंबर वन,
पहली बात,
We baptize them.
हम बपतिस्मा देते हैं.
That means we identify them with Jesus Christ and their church.
मतलब जब हम बपतिस्मा देते हैं, इसका मतलब हम उनको यीशु मसीह से और यीशु मसीह की कलीसिया से उनका वास्ता करवाते, पहचान करवाते.
Number two.
दूसरी बात.
What do we do?
और क्या करते हैं हम?
We teach them to observe all things that Jesus commanded.
और फिर हम उनको सिखाते हैं वे सब चीजें करने के लिए जो यीशु मसीह ने उनको सिखाई हैं.
Is that a specific commandment for all believers?
क्या ये जो आगे यहाँ पे दिए, क्या ये हर एक विश्वासी के लिए आज्ञा है? क्या ये
चेला ही चेला
बनाते? ध्यान सुनिएगा, नहीं बोलने से पहले सुनिए तो आप.
example,
ये जो आज्ञा यहाँ पे दी गई है,
I see some of these sisters back here.
हम कुछ बहनों को देख रहे हैं पीछे वहाँ पे.
Are they to go out and baptize people and to teach them all that Jesus commanded?
क्या उन बहनों को बाहर जा करके सब लोगों को बपतिस्मा देना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए यीशु मसीह ने सिखाया कि नहीं सिखाया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इनको?
You need to be able to answer these questions.
आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना आना चाहिए.
Let me ask you this.
अच्छा, एक और प्रश्न पूछते हैं.
After Matthew 28 and the Great Commission.
मत्ती 28 के बाद और इस महान आदेश के बाद, इसको महान आदेश बोला था कि बोला था?
Can you find me any verse in the New Testament where the apostles instruct, exhort, or command the believers to make disciples or plant churches?
मत्ती 28 के बाद आप हमको कहीं भी नए नियम में कोई एक पद दिखा दीजिए जहां पे प्रेरित लोग कलीसिया के आम विश्वासियों को निर्देश दे रहे हैं कि जाओ तुम कलीसिया की स्थापना करो, बपतिस्मा दो लोगों को. ढूंढी 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 होगा. ढूंढिए तो मिलेगा.
Now listen carefully.
ध्यान से निश्चित रूप
से. We've mentioned this many times.
हम इसको पहले कई बार बता चुके हैं.
All believers are to be witnesses.
हर एक तो एक फर्क समझिएगा, भिन्नता समझिएगा. और कई लोग क्या करें, इस भिन्नता को क्या करते हैं, गड़बड़ कर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं सब लोग. बहुत लोग आजकल बहुत जोर दो हो रहे हैं ना, कलीसिया स्थापना करना सिर्फ पीछे पगलाए पड़े सब लोग. ठीक है, तो क्या है, तो हरेक विश्वासी को गवाह होना है, हरेक विश्वासी को साक्षी देना है, इसमें कोई शक नहीं, ये दो राय नहीं. अगर विश्वासी है आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इसमें मतलब नहीं. अगर विश्वासी है तो उसको यीशु मसीह के बारे में लोगों को तो बताना ही बताना है, इसमें कोई दो राय नहीं. ठीक है,
they are to go out and with their family, with their friends and with their strangers be able to clearly communicate the gospel.
तो अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, और साथ में जो लोग उनसे मिलते हैं, अनजान लोग जो भी हों, उनको वो सफाई से उन्हें सुसमाचार बताना आना चाहिए हर एक विश्वासी को.
So you have to interpret the book of Acts as well as the Great Commission in its context.
तो आपके जो पेटर काम में ये जो महान आदेश है, इसको हमें संदर्भ में हो करके प्रचार करना सीखना है इसको.
एंड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ गॉड कॉल्ड मेन गोइंग आउट टू एस्टैब्लिश न्यू चर्चेस.
और हमको ये समझना है कि थोड़ी सी भिन्नता है, भेद है, फर्क है उन लोगों में जिनको प्रभु ने विशेष तौर से बुलाया है बाहर जाकर के कलीसिया की स्थापना करने के लिए बपतिस्मा देने के द्वारा. वे लोग फर्क लोग हैं.
The ordinary ministry of all Christians in sharing, communicating the gospel.
और सामान्य विश्वासियों की जो सेवा है, हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है सुसमाचार का प्रचार करना, गवाह बनना, साक्षी देना. इसमें और औपचारिक तौर से बुलाए गए सेवकों जिनको काम है, मुख्य काम है जाकर के कलीसिया की स्थापना करना, दोनों में फर्क है. भिन्नता समझ रहे कि नहीं समझ रहे. तो इस दोनों भिन्नता का आजकल कई लोग जो है इसको बड़ी सी वो स्त्री लेकर के, स्त्री मतलब आयन प्रेस लेकर के दबा दिया, बराबर कर दिया, अब सब कुछ एक ही चीज हो गया.
एनी क्वेश्चन ऑन दैट?
कोई प्रश्न समझ आया, नहीं समझ आया, कोई दिक्कत?
We're talking about properly interpreting the word of God and clearly teaching and applying it to the people of God.
तो हम ये सारे जो हम खंड देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं ताकि हम आपको मदद कर सकें कैसे हमें पदों को सही तरीके से अनुवाद करें, इसके संदर्भ में व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों को लागू करके देख रहे हैं.
You want to avoid two extremes.
तो दो चरम स्थितियां हैं और उन दोनों चरम स्थितियों से हमको बच के रहना है.
You don't want to send out uncalled, ungifted, anointed men to preach the gospel and plant churches.
हम ऐसे लोगों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कलीसिया की स्थापना करने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए, जो बुलाए नहीं गए हैं, जिनका अभिषेक नहीं हुआ है और जो योग्य नहीं है.
And the other extreme is you don't want all believers just to sit passively in the church and receive the teaching and do nothing.
और दूसरा चरम स्थिति यह है कि सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, कलीसिया में बस बैठे रहते हैं और केवल वचन सुनते ही सुनते रहते हैं और फिर उसका कुछ करते नहीं. वो लोग कभी सुसमाचार प्रचार का काम करते. तो ये दो चरम स्थितियां हैं. एक है कोई भी मिल जाए सभी को पकड़ के भेज दो, जाओ चर्च की स्थापना करो. दूसरे हैं बैठे रहो, सुसमाचार सुनो, वचन सुनो और कुछ करो नहीं उसके बारे में, खाली सुनते रहो. दो चरम स्थितियां हैं.
एनी क्वेश्चन?
आप कोई प्रश्न इसके बारे में समझ आ गया कि नहीं समझे? कोई प्रश्न है? कोई कुछ बात साफ करना है? गवाही दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं?
वो गवाही भी है, प्रश्न भी है, मैं बहुत शॉर्ट में कह दे रहा हूँ.
अच्छा, बहुत शॉर्ट में 15 सेकंड में. हाँ जी.
तो एक दिन मैं कुछ काम कर रहा गया, कुछ काम के लिए, तो उसने कहा कहाँ से आ रहा है, तो मैंने कहा मैं चर्च से आ रहा हूँ. कहना क्यों चर्च जा, हमारे गांव में बहुत सारे लोग जाते हैं. मैंने कहा ठीक है. कहना कि क्या है वहाँ पर? हमने कहा कि मैं बहुत दुखी था, मुझे एक सरदार बहुत सता रहा था, तो प्रभु ने मुझे ठीक कर दिया. तो कैसा क्या है, किसी की बुराई मत करना किसी दूसरे धर्म की. यही मैं दो एक लोगों से सुन चुका हूँ कि डोंट अपोज एनीबडी एनी रीजन, गो ऑन, गो योर सर्व. ये इसके लिए क्या लोगों क्या हम कैसे बचे, कैसे रिप्लाई?
चाय के समय हम बताएंगे आपको. कोई और प्रश्न इस बात से संबंधित? प्रश्न ये बात यहाँ पे कि सेवा किसके लिए? हाँ जी.
वो बैठे रहते सुसमाचार सुनते रहते, फिर घर वापस चले जाते, उनके लिए क्या?
There are people in the church who keep listening to the gospel, hear the gospel, and are being taught and fed, but they do nothing about it. So they are Christians, but they do nothing.
Listen carefully. If you are the leader in the church, you are to teach them their privilege and responsibility.
तो आपको उनको सिखाना है कि उनके सौभाग्य क्या है और साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी क्या है.
You are to exhort them that every member in the church has a gift, a responsibility, and a ministry.
आपको उनको सिखाना है कि कलीसिया के प्रत्येक जन के पास एक वरदान है और एक जिम्मेदारी है और साथ ही प्रभु ने एक सेवा भी दिया हर एक विश्वासी को.
If you go out early in the morning and try to let your cows out of the barn.
अगर आप सुबह सुबह जाएं और अपने गायों को अपने गौशाला से निकाल दें बाहर.
But some of them don't want to go out.
लेकिन आप दरवाजा खोलने के जाओ तुम चरने के लिए चले जाओ लेकिन कुछ गायें कहें हम नहीं जाएंगे.
How do you get them out? How do you get them out?
अब वो लोग जब गाय को आप बाहर निकालना चाहते हो बाहर नहीं निकलने गौशाला से कैसे बाहर निकालते हैं अपन को.
Listen carefully. If you don't clearly teach the word of God regarding the proper function and ministry of the church,
अगर आप परमेश्वर के लोगों को कलीसिया के कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में सही तरीके से नहीं सिखाएंगे,
you'll have one man sitting to preach, standing to preach, and everyone sitting to listen.
नहीं तो फिर ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, आपकी कलीसिया में एक आदमी खड़ा होकर के प्रचार करेगा और बाकी सब लोग बस बैठ करके सुनाई करेंगे.
Then you must have a personal pastoral ministry to go to each one and encourage and exhort them regarding their own life and their own ministry.
तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत सेवा करनी पड़ेगी, प्रत्येक व्यक्ति से जाके बात करना पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पर और उनको समझाना पड़ेगा कि उनकी व्यक्तिगत सेवा क्या है, प्रभु ने उनको क्या बुलाहट दी और किस तरह से प्रभु उनको उपयोग कर सकता है.
Now, I've told you before, if you have an 85-year-old woman is sitting in the church, you don't tell her to go out and stand on the streets and preach the gospel.
मैंने आपको पहले बताया, मान लीजिए आपके कलीसिया में एक 85 साल की बूढ़ी अम्मा है, अब आप उनसे ये नहीं कहेंगे जाइए आप सड़क पे जाकर प्रचार करिए चौराहे खड़े होकर के.
What do you tell her to do?
लेकिन आप क्या कहेंगे उनसे?
You look in the word of God and see the specific exhortations to older women.
लेकिन आप वचन में देखते हैं और वचन जो है हमको साफ-साफ निर्देश देता है कि वृद्ध महिलाओं से हमको क्या कहना चाहिए.
And you clearly teach and instruct them regarding what is their ministry and what is their responsibility.
जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी मुख्य सेवा मुख्य जिम्मेदारी क्या है वो साफ साफ दिखाई देता है हमको नए नियम में.
Well, let's just stop right now. Let me ask you a question. Tell me three things that an 85-year-old healthy woman can do in the church.
अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हमको बताइए एक 85 साल की वृद्ध महिला जो कि स्वस्थ है वो कलीसिया में तीन क्या चीजें कर सकती है आप बताइए, तीन किस तरह की सेवा कलीसिया में कर सकते हैं बताइए. हाँ जी एक बार एक एक बारी बारी हाँ टीच यंगर वुमेन.
Yes, where did it say that?
कहाँ कहाँ गया ये बात? पता नहीं भाई, is it in the letters? One of the letters.
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
You study that passage specifically.
आप उस इस खंड का अध्ययन करिएगा जाकर के.
And where is that passage?
और कहाँ है वो खंड?
Now you are a preacher.
आप लोग तो प्रचारक हैं, तिमोथियुस 5 अध्याय में है कि नहीं है?
You need to know your Bible.
आपको मालूम होना चाहिए अपना वचन को.
If a woman comes to you and she says, "What can I do?"
अगर कोई महिला आपके पास आती है, मैं क्या कर सकती हूँ?
You open your Bible to 2 or 3 verses and you exhort and encourage her in regards to what she can do.
और आप बाइबल को खोलें और उनमें से उसको वचन को दिखा कर उनको बता सकते हैं वो क्या कर सकती हैं.
By way of instruction and by way of biblical example.
और बाइबल के उदाहरण के आधार पे और बाइबल के निर्देश के आधार पे.
Where does the Bible talk about older women?
और बाइबल कहाँ वृद्ध महिलाओं के बारे में और कहाँ बात करती है? टाइटस में क्या कहती है? क्या कहता है?
Where else?
टाइटस 2.
Where else?
और कहाँ पे? तिमोथियुस और टाइटस में और कहाँ पे?
Give me one example from the Bible of an older woman that had a ministry.
एक किसी वृद्ध महिला का उदाहरण दीजिए वचन में जिसके पास कुछ जो सेवा में सम्मिलित थी लगी हुई थी. हाँ
अन्ना
अन्ना
अन्ना अन्ना
अन्ना की आना अन्ना किसी बात करें अन्ना गन्ना हन्ना किसकी बात करें
आना
कौन 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 वाली हन्ना गन्ना अन्ना शामिल वाली हन्ना श्यामा वाली अपना 85 साल की कहाँ थी भाई, वो बच्चे की मांग रही है। हाँ जी तिमोथी ग्रैंड मदर, तिमोथी की अम्मा नानी, उसका नाम क्या था? लुईस। और कौन था? लूक का पहला अध्याय कौन है वो? अच्छा ओके, लूक चैप्टर वन, दैट हन्ना।
व्हाट डिड शी डू?
उसने क्या किया, उस हन्ना ने क्या किया? लूका का पहला अध्याय हन्ना ने क्या किया?
Are you a preacher? You need to know these things. So you got old women in your church.
अब आपके चर्च में कोई बुजुर्ग महिला है?
Let's turn to 1 Timothy chapter 5. We want to ask another interpretive question.
पहला तिमोथी उसके पांचवें अध्याय में हम आएंगे और एक और प्रश्न पूछेंगे यहाँ पे।
1 Timothy chapter 5.
पहला तिमोथी उसके पांचवें अध्याय।
Paul gives specific instructions to younger men and to younger women and to older men and to older women.
पॉलुस यहाँ पे निर्देश देता है जवान महिलाओं को, जवान बहनों को।
Look at verse 3.
और फिर यहाँ पे देखिए तीसरे पद में।
Honor widows who are widows indeed.
और यहाँ पे जो महिला जो विधवाएं हैं, जो वास्तव में विधवाएं हैं, उनका आदर करो।
Verse 5.
पांचवा पद।
She is a widow indeed who's been left alone, fixed her hope on God, continues in entreaties and prayers night and day.
और पांचवे पद में जो लोग महिलाएं, जो वृद्ध महिलाएं, जो वास्तव में विधवाएं अकेली हैं और केवल परमेश्वर पर आशा रखती हैं और दिन रात अध्ययन करती रहती हैं, प्रार्थना में लवलीन रहती हैं।
Look at verse 9.
और पांचवे पद देखिए।
A widow who is to be put on the list only she's not less than 60, having been the wife of one man, reputation for good works, brought up children, shown hospitality, washed the saints' feet, assisted those in distress, every good work.
और नवे पद में दसवें पद में क्या लिखा, कौन है ये वास्तव में विधवा? वो वास्तव में विधवा है जिन उन्हीं विधवा के नाम सूची में सम्मिलित किया जाए जो 60 वर्ष से कम की हो, कम ना हो, और एक ही पति की पत्नी रही हो, भले काम में सुनामी रही हो, जिन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथि सेवा की हो, पवित्रों के चरण धोए हो, दीन दुखों की सहायता की और अपने प्रत्येक अपने आप को प्रत्येक भले काम में लगाया हो, इस तरह की महिलाएं ही वास्तव में विधवा है।
That is a ministry of an older woman.
ये है एक वृद्ध महिला की सेवा।
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए।
In Acts chapter 20.
तो काम उसके
what did Paul tell the leaders of the church in Ephesus?
पौलुस ने क्या कहा उन लोगों को जो एफेसस के थे कलीसिया में?
Shepherd all the flock of God.
हरेक परमेश्वर के हरेक लोगों को, सारी संपूर्ण भेड़ की तुम रखवाली करो, भेड़ों की रखवाली करो।
What did Paul say in 1 Thessalonians 2 about his own ministry?
परमेश्वर ने क्या कहा अपने यीशु मसीह ने पहले थिस्सलोनी को अपने स्वयं की सेवा के बारे में क्या कहा पौलुस ने?
He said I was exhorting and encouraging each one of you as a father does his children.
पौलुस ने कहा कि मैं तुम में से प्रत्येक को उत्साहित कर रहा जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को करता है उत्साहित।
Your responsibility is to be able to minister to and teach the word to and apply it to each person in the church.
लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कलीसिया के अगुवे होने के नाते कि हर एक जन के ऊपर आप अगुवाई करें, उनकी देखभाल करके, केवल एक दो जन के नहीं, कलीसिया के सब लोगों की देखभाल करना है आपकी जिम्मेदारी है।
So they can grow in their own spiritual life.
ताकि वो अपने व्यक्तिगत जीवन बढ़ सकें.
And they can exercise a ministry in the church.
और ताकि कलीसिया में फिर वो लोग अपना जो प्रभु ने सेवा दी है वो कर सकें.
Or let me ask you a question.
एक और प्रश्न मैं पूछना
है. First Timothy.
पहला तिमोथी में
1 Timothy in chapter 5 verse 9.
पहला तिमोथी उसका पांचवा अध्याय
that a widow who's over 60 and has no family be put on the list.
और जो महिला 60 साल की से कम ना हो, मतलब ऊपर ही हो, उसी का नाम आप सूची में शामिल करते हैं।
Let's interpret this passage.
अब इस पद का हम लोग व्याख्या करते हैं।
Is this only for the first century, or is this a timeless principle that is to be applied today?
क्या ये जो बात यहाँ पे हमको बताई जा रही है वो केवल पहली शताब्दी में लागू होता है कि ये सब मसीहों के लिए हर समय की कलीसिया में लागू होता है ये बात जो यहाँ पे की जा रही है नवे पद में?
Does the church have the responsibility to care for widows over 60 that have no one to care for them?
क्या कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं है कि जो 60 साल से ज्यादा की महिलाएं हैं उनका कोई देखने वाला नहीं है, क्या कलीसिया को उनकी देखभाल करनी चाहिए कि नहीं चाहिए?
Have you ever seen a church do this in a formal way?
क्या आपने आज तक कोई कलीसिया देखी है जो औपचारिक तौर पर इस तरह काम करती है?
Your church do this?
क्या आपकी कलीसिया करती है?
Why not?
क्यों नहीं करती आपकी कलीसिया?
Is there any other verse in the epistles that would support this principle?
क्या कोई और पद है बाइबल में जो ये जो सिद्धांत यहाँ पे दिखाया जा रहा है उस सिद्धांत की का सहायता करने के लिए उस सिद्धांत को दोबारा स्थापित करने के कोई और पद है बाइबल में?
Is there any other verse that talks about widows in need?
क्या कोई और पद है जो विधवाओं की बात करता है जो आवश्यकता में होती है विधवाओं के बारे में बात करता है? कहाँ पे? बोलिए बोलिए कहाँ पे? हाँ जी Acts 6
But that was an extraordinary situation.
वो तो एक अप्रत्याशित विशेष स्थिति थी.
Jew and Gentile Christian were joined together.
गैर यहूदी और यहूदी एक साथ जोड़ दिए गए.
And the Greek-speaking widows were being overlooked in the daily serving of the food.
और जो यूनानी विधवाएं थीं उनको अनदेखा किया जा रहा था प्रतिदिन के भोजन बांटने के संदर्भ में.
Does that mean that your church has the responsibility to feed widows every day?
क्या कलीसिया की जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन वो विधवाओं को भोजन खिलाएं? क्या ये कलीसिया की जिम्मेदारी है? क्या कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो प्रतिदिन विधवाओं को भोजन खिलाएं? क्या कलीसिया की जिम्मेदारी है प्रतिदिन विधवाओं को भोजन खिलाएं?
Now you're saying this. I'm a preacher. Or just a minute. You may be sitting here thinking this.
हो सकता है आप यहाँ बैठे ये सोच रहे हैं.
I'm a preacher.
मैं तो प्रचारक हूँ.
What are we doing talking about old women?
हम क्यों बूढ़ी औरतों के बारे में बात करें यहाँ पे?
They're useless.
वो तो फालतू की हैं, बेकार हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है.
What does James say?
याकूब ने क्या कहा?
True religion and undefiled in the sight of God.
याकूब ने क्या कहा? सच्ची धार्मिकता क्या है?
Two things.
अनाथों और विधवाओं की सेवा करना.
Two things.
दो बातें.
Number one.
पहली बात.
Keep yourself unstained from the world.
संसार से अपने आप को बचा के रखना.
Number two.
दूसरी बात.
To care for orphans and widows in their distress.
और जो विधवाएं हैं और जो अनाथ हैं उनकी सहायता करना.
What is he talking about?
किस चीज के बारे में बात कर रहे हो?
Two things.
दो चीज के बारे में बात कर
रहे हो. Holiness.
पवित्रता के बारे में.
And law.
और प्रेम के बारे में.
Purity.
शुद्धता के बारे में.
And compassion.
और दया के बारे में.
Now that may not look like much to you.
हो सकता है आपको दिखने में बहुत ज्यादा ना लग रहा है.
But do you know what James says?
लेकिन आपको मालूम है याकूब ने क्या कहा?
In the sight of God.
परमेश्वर की दृष्टि में.
Did you hear that?
क्या आपने
In the sight of God,
प्रभु की निगाह में
This is true religion.
ये है वास्तविक विश्वास.
To care for orphans and widows in their distress.
परमेश्वर और पिता के सामने सच्ची भक्ति यही है.
And to keep yourself unstained from the world.
और साथ ही साथ अपने आप को संसार से बचा के रखें.
True religion consists of two main things.
और सच्ची भक्ति क्या है? दो चीजें.
Love.
प्रेम.
And holiness.
पवित्रता.
Listen carefully. I ask you again.
फिर से पूछता हूँ आपसे.
Is this a timeless principle or is this a cultural practice?
और जो तीमिथस में हमने बात की वृद्ध महिलाओं के बारे में, क्या ये एक सांस्कृतिक बात है कि उस समय के समाज के लोग लेती या हमेशा कलीसिया के ऊपर लागू?
You got a woman in your church.
आपकी कलीसिया में कोई
औरत है? She's over 60.
और वो 60 साल से ऊपर
है? She's got no family.
उसके पास कोई परिवार नहीं है?
She has a good character.
उसका चरित्र अच्छा है?
She had a useful ministry.
उसका एक उपयोगी सेवा?
She has no one to care for her.
लेकिन उसका कोई देखने वाला नहीं है.
What is the church supposed to do?
कलीसिया को क्या करना चाहिए?
Do you have to make a list?
क्या आपको सूची बनाने की जरूरत है?
Now we're talking about interpreting the Bible in light of practical issues in the context of the church.
हम बात कर रहे हैं बाइबल की व्याख्या करना कलीसिया के संदर्भ में.
See, I got no time for old women. I'm a preacher.
हो सकता है कि मेरे पास समय नहीं है बूढ़ी महिलाओं के लिए, मैं तो प्रचारक हूँ.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
You can't go around and hold every old woman's hand.
ये जरूर है कि आप हर एक बूढ़ी अम्मा का जाके हाथ नहीं पकड़ सकते.
You are to do what God has called you to do.
और प्रभु ने आपको बुलाया है वो करने के लिए जो करने
you are to teach and instruct the church that they are to minister to one another.
और लेकिन आपको कलीसिया को सिखाना है, निर्देश देना है कि कलीसिया को एक दूसरे के जीवन में निवेश करना है.
Lot of widows in India.
भारत में बहुत सारी
विधवाएं. Lot of old women in the church.
बहुत सारी विध महिलाएं कलीसिया में.
How do we interpret and apply that verse?
और कैसे हम लागू करेंगे उस पद को?
You have to apply biblical principles.
आपको व्यवहारिक बाइबल के सिद्धांतों को लागू करना पड़ेगा.
What does the scripture say in interpreting itself?
परमेश्वर वचन क्या कहता है जब वो अपने स्वयं की व्याख्या करता है तो.
Any questions?
कोई प्रश्न बाकी है?
Or let me ask you one more question.
इससे पहले आप प्रश्न पूछे, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ.
You won't ask me questions, I'll ask you.
क्योंकि आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछते इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ.
Can a woman have the gift of teaching?
क्या एक महिला के पास शिक्षा देने का वरदान हो सकता है?
And what context and in what manner ought she exercise this gift of teaching?
किस संदर्भ में और किस तरह से एक महिला को शिक्षा देने का वरदान उपयोग करना चाहिए?
You say yes, but हाँ. Show me from the scripture.
हाँ तो बोल दिया आपने. अब हमको दिखाइए, वचन दिखाइए किस संदर्भ में किस तरह से एक महिला वरदान देने के शिक्षा देने के वरदान को उपयोग कर सकती है. हाँ जी, बाइबल सिखाइए. अमंग विमेन
लुका 8 के 3 में लिखा है कुछ स्त्रियां अपनी संपत्ति के द्वारा
बस लूट लीजिए आप उनको.
Listen carefully. Paul says in 1 Timothy 2, I do not permit a woman to teach or exercise authority over a man.
पहला तिमोथी के दूसरे अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं अनुमति नहीं देता हूँ महिला को किसी पुरुष के ऊपर अधिकार जताने के लिए.
What does that verse mean?
उसका मतलब क्या उस पद का?
Yes, let's look at it in its context.
आइए अब उसको उसके संदर्भ में देख लें वहाँ पे.
I would not so much interested in answering practical questions as we are seeing how to apply principles of interpretation.
We don't interested in practical.
Well, we're interested in both, yeah.
Okay.
You understand? Yes. We're interested in answering practical questions by using principles of interpretation.
तो हम व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे इन सिद्धांतों का ये जो जो व्याख्या के सिद्धांत हैं इनको कैसे उपयोग करना है वो हम सीखना चाहते हैं अच्छे तरह से.
ज्यादा
रुचि है.
First Timothy chapter 2.
तो आप पहला तिमोथियुस के दूसरे अध्याय को ध्यान से देखिए, संदर्भ में देखिए. पहला तिमोथियुस के दूसरे अध्याय ध्यान से देखें.
Verses 9 to 15.
पहला तिमोथियुस दूसरे अध्याय के 9 से लेकर 15 पद को देखिए वहां पे क्या चल रहा है.
Very important word from Paul concerning women.
बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है पौलुस की ओर से महिलाओं को लेकर के.
Verse 12. I do not allow a woman to teach or exercise authority over man, but to remain quiet.
मैं एक महिला को अनुमति नहीं देता कि वो उपदेश दे या पुरुष के ऊपर अधिकार जताए.
Is this a practical cultural issue, or does it have a timeless biblical principle as its foundation?
क्या ये एक व्यवहारिक और सांस्कृतिक विषय था वहाँ का, या इसका समय से ना बंधा हुआ हमेशा कलीसियाओं पे लागू होना वाला सिद्धांत है यहाँ पे? पार्डन, टाइमलेस कल्चरल
व्हाट
राज सिंह कल्चरल दे आर सेइंग टाइमलेस.
वहाँ की पृष्ठभूमि
तो सांस्कृतिक है, आज लागू नहीं होता. फिर तो आज महिलाएं अधिकार जमा सकती हैं.
लुक एट द नेक्स्ट वर्स.
दूसरे पद को देखिए वहां पे.
वर्स 13.
तेरा पद को देखिए.
इज पॉल आर्ग्यूइंग फ्रॉम अ कल्चरल प्रैक्टिस और फ्रॉम अ बिब्लिकल प्रिंसिपल.
क्या पॉलस यहां पे, तेरा पद देखिए, जब पॉलस तेरा पद में अपना तर्क रख रहा है, जब तर्क रख रहा है बता कारण बता रहा है, जब पॉलस कारण बता रहा है तो क्या पॉलस यहां पे संस्कृति का कारण बता रहा है, सामाजिक कारण बता रहा है कि वचन के आधार पर कारण बता रहा है?
What's the principle?
तो ये क्या सिद्धांत है यहाँ पे, क्या ऐतिहासिक क्या सिद्धांत है यहाँ पे दिखाई दे रहे हमको?
God's created order.
परमेश्वर ने जो सृष्टि की है और सृष्टि का जो क्रम है उससे उससे वो विचार कर रहा है, तर्क कर रहा है.
Does this mean a woman is inferior to a man?
क्या इस पद का ये मतलब है कि एक औरत जो है एक आदमी से कम होती है?
Does this mean a woman is not as important as a man?
क्या इसका ये मतलब है कि एक औरत आदमी जितनी महत्वपूर्ण नहीं है?
Alright, you told me a woman could have the gift of teaching.
आपने तो कहा था कि एक महिला के पास शिक्षा देने का वरदान हो सकता है.
Paul said, I don't allow a woman to teach or exercise authority over a man.
लेकिन पॉलुस तो कह रहा है कि मैं एक महिला को अनुमति नहीं दूंगा प्रचार करने के लिए और पुरुष के ऊपर अगुवाई करने के लिए.
So in what way and in what context might a woman teach?
तो किस संदर्भ में या किस तरह एक महिला सिखा सकती है? हाँ जी. अच्छा, महिलाएं महिलाओं को सिखा सकती हैं? He wants to preach now. Okay.
All right, listen carefully.
अब ध्यान से सुनिए.
That word to teach younger women doesn't mean a formal instruction. It means a more private, informal exhortation.
तो जब तीतुस में दूसरे अध्याय में वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा की बात हो रही है, महिलाएं महिलाओं को सिखा सकती हैं, वहाँ पे बात एक औपचारिक निर्देश की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे बात हो रही है अनौपचारिक व्यक्तिगत स्थिति में महिलाएं अकेले में अन्य छोटे समूह में महिलाओं के बीच में शिक्षा की बात की जा रही
है. May I ask you another question?
एक और प्रश्न पूछता
हूँ. You turn on the TV.
टीवी ऑन किया आपने.
You see George Meyer.
आप देखें जॉर्ज मेयर को. क्या चीज?
He's preaching.
वो प्रचार कर रहे हैं.
He's preaching from the word of God.
परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहे हैं.
Now listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
Most of what she's teaching is false doctrine and incorrect.
अभी वो भूल जाएगी महिला की नहीं है. मुख्य बात, पहली बात तो ये है कि ज्यादातर चीजें जो सिखा रही हैं, कई चीजें वो गलत हैं और परमेश्वर के वचन से विपरीत हैं.
But if she had right doctrine and was clearly teaching the Bible, could she preach to that group of people?
अच्छा, अभी शिक्षा के बारे में भूल जाइए. क्या सिखा रही है, नहीं सिखा रही, उसकी बात नहीं कर रहे हम. बात ये कर रहे हैं, मान लीजिए कि जॉयस मेयर जो प्रचार कर रही है, अगर वो बढ़िया सिखा रही है, सब कुछ उत्तम, बिल्कुल ठीक ठीक सिखा रही होती, एक एक बात बिल्कुल सही कह रही होती, तो क्या वो अगर सही शिक्षा दे रही होती तो उस संदर्भ में इस तरह से सब लोगों को शिक्षा दे सकती है, नहीं दे सकती?
Why?
कहे नहीं दे सके.
Why not?
क्यों नहीं दे सके?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए दोस्तों.
What's the context of 1 Timothy?
तिमोथियुस में संदर्भ क्या चल रहा है यहाँ पे देखिए.
Chapter 3.
तीसरा अध्याय.
Verse 15.
15 पद.
In case I'm delayed, I write that you might know how to conduct yourself in the house of God.
अगर मुझे मेरे आने में देर हो जाए तो तुझे मालूम रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया, तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए.
Now, what's the context of Paul's instruction?
तो पौलुस का निर्देश का संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में बात हो रही है, मुख्यतः प्राथमिक तौर पे?
The church.
कलीसिया के संदर्भ में.
And what instruction specifically is he giving in chapter 3 verses 1 and following?
और तीसरे अध्याय में पहले पद से लेके आगे वो किस बात की मुख्यता से निर्देश दे रहे हैं? तीसरे अध्याय में किसके बारे में बात कर रहे हैं मुख्यता?
Talking about the qualifications of the church leaders.
कलीसिया के अगुओं के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके गुणों के बारे में बात कर रहा हूँ.
Then you look in chapter 5.
और फिर पांचवें अध्याय में देखिए.
We're trying to interpret the scripture with scripture.
और फिर हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के.
And you look at verse 17.
अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं.
Now chapter 3 talks about the qualifications of the church elders.
तीसरा अध्याय बात करता है कलीसिया के अगुओं के गुणों के बारे में.
And chapter 5 verse 17 talks about the responsibility of the church elders.
और
chapter 5 verse 17
उसका 17 अध्याय बात करता है कलीसिया के अगुओं की या प्राचीनों की जिम्मेदारियों के बारे में.
And they do two main things.
और वे लोग दो मुख्य काम करते हैं. देखिए
नंबर 1,
पहली बात,
they rule the church.
वो कलीसिया का प्रबंधन करते हैं.
Not like a big boss.
एक बड़े साहब की तरह नहीं.
But by their example.
लेकिन अपने उदाहरण के द्वारा.
Number 2,
दूसरी बात,
they teach the church.
और वो कलीसिया सिखाते हैं.
That's their responsibility.
ये उनकी जिम्मेदारी है.
To exercise authority.
अधिकार को जताना.
And to teach.
और सिखाना.
Now what does Paul forbid women to do? What two things does Paul forbid women to do in the church?
और दो कौन सी चीजें हैं जिनको पौलुस कलीसिया में महिलाओं को करने से मना करता है?
He forbids them to rule or exercise authority.
वो महिलाओं को अधिकार करने से मना करता है.
And he forbids them to teach men in the church.
वो पुरुषों को कलीसिया के संदर्भ में सिखाने के लिए मना करता है.
That's the two responsibilities of the church elders.
और ये दो मुख्य जिम्मेदारियां हैं कलीसिया के अगुओं की.
And that's the two things that Paul says women can't do.
और ये दो चीजें पौलुस कहता है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं.
So you put those two verses together and tell me what a woman can and can't do.
अब इन दो चीजों को आप साथ में रखिए, जोड़िए और फिर हमको बताइए महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं.
What is Paul's meaning in chapter 2?
पौलुस का क्या अर्थ है दूसरे अध्याय में?
He's talking about the context of the church.
वो कलीसिया के संदर्भ में बात कर रहा
है. He's talking about the qualifications and the ministry of the elders in the church.
वो बात कर रहा है कलीसिया में प्राचीनों के गुणों और प्राचीनों के क्या उनको कैसा होना चाहिए.
One of the qualifications of elders is he must be the husband of one wife.
और उनका एक गुण ये है कि उनको एक महिला का पति होना चाहिए.
Can a woman be the husband of one wife?
क्या कोई पत्नी एक ही क्या कोई औरत एक ही पत्नी का पति हो सकती है? क्या कोई औरत एक ही पत्नी का पति हो सकती है? क्या कोई औरत एक ही पत्नी का पति हो सकती है? हो सकती है नहीं हो सकती है? समझ नहीं आया? क्या कोई औरत एक ही पत्नी का पति हो सकती है? इतना परेशान ही हो रहे हैं आप लोग. नहीं हो सकती भाई, खत्म.
Listen carefully.
ध्यान से नहीं बात.
You want to properly interpret a verse.
अगर आप सही तरीके से किसी भी पद का अनुवाद करना चाहते हैं.
First rule.
पहला नियम यह है.
Context.
संदर्भ संदर्भ संदर्भ.
What's the context?
संदर्भ क्या है? संदर्भ क्या
है? The local church.
स्थानीय कलीसिया.
The qualifications and ministry of church leaders.
कलीसिया के अगुओं के और उनकी सेवा के गुण क्या है या उनकी योग्यता क्या है?
They must have these qualifications.
उनके अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए.
And they must have this ministry.
और उनके पास इस तरह की सेवा होनी चाहिए.
And their ministry is mainly two things.
और उनकी सेवा मुख्यतः दो चीजें हैं.
They are to rule the church.
उन्हें कलीसिया के ऊपर राज करना है.
And they are to teach the church.
और उनको कलीसिया को सिखाना है, शिक्षा देना है.
What two things does Paul say a woman cannot do in the church?
और पौलुस कौन सी दो चीजें जिनको कह रहा है एक महिला कलीसिया के संदर्भ में भीतर नहीं कर सकती? दो बातें.
She can't rule.
वो अगुवाई नहीं कर सकती, अधिकार नहीं जता सकते.
And she can't teach.
और वो शिक्षा नहीं सकती.
What is an elder supposed to do?
लेकिन एक जो कलीसिया का प्राचीन है उसको क्या करना चाहिए? दो काम.
Rule.
अगुवाई करना चाहिए.
And teach.
और शिक्षा देना चाहिए.
What two things can a woman not do?
और लेकिन एक औरत कलीसिया के भीतर क्या नहीं कर सकती? दो चीजें.
She cannot rule.
वो अधिकार नहीं कर सकती.
She cannot teach.
और सिखा नहीं सकती.
Therefore.
इसलिए. भाई हम जब्त कर लेंगे आपका फोन. इसलिए. इसलिए.
What's Paul say?
इसलिए अब पौलुस क्या कह रहा है? अब क्या कह रहे हैं पौलुस, बताइए.
You got a brain. Think.
सोचिए आप लोग, सोचिए. अपने बुद्धि का उपयोग करिए.
We're talking about interpreting the word of God.
हम परमेश्वर के वचन की
व्याख्या करेंगे. We're trying to answer this question.
हम इस प्रश्न का उत्तर
देंगे. When Paul wrote this verse down.
जब पौलुस ने इस पद को लिखा था.
In his mind.
उसके मस्तिष्क में.
What was his meaning?
उसका मतलब क्या था? क्या लिख रहा था?
I've got a friend.
मेरे पास एक दोस्त है.
He's got a wife.
उसकी एक पत्नी है.
And he will not let his wife give directions to the workman who comes to work in the house.
So you, Paul is thinking like this, right? That's what he's saying.
I'm saying that this, my friend, that's how he's applying this verse. Let me ask you a question. I've got a friend.
मेरा एक दोस्त है.
And he interprets this verse.
और जब वो इस पद का अनुवाद करता है, तो इस तरह से अनुवाद करता
है. He has a wife.
इनके दोस्त.
Sometimes.
दोस्त के पास एक पत्नी है.
Sometimes a workman comes to work in the yard.
तो मेरे दोस्त है, उसके दोस्त के घर में कभी-कभी कुछ काम करने वाले लोग आते हैं, कुछ कारीगर आते हैं, कुछ मजदूर लोग आते हैं काम करने के लिए घर में.
He says if I'm not there.
वो कहता अगर मैं घर में नहीं हूँ.
You don't tell that man what to do.
तो तुम उस आदमी को नहीं बताओगे तुम्हें क्या करना चाहिए.
Because the Bible says you're not to exercise authority over a man.
क्योंकि बाइबल ने ये कहा है कि तुमको आदमी के ऊपर अधिकार नहीं जताना है.
You wait until I come home.
तुम रुके रहो जब तक मैं घर ना
आऊं. I'll tell him what to do.
मैं बताऊंगा उसे क्या करना है.
Is that the proper application of the verse?
क्या ये इस पद का सही लागूकरण है?
Why?
क्यों? हाँ जी. नहीं 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 इसकी बात ये नहीं हो रही है. बात ही नहीं हो रही
है.
हाँ जी. ठीक है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम सेइंग इट्स डिफरेंट फ्रॉम द चर्च. ध्यान से सुनिए.
यू वांट टू प्रॉपर्ली इंटरप्रेट अ वर्ड.
आई थिंक यू शुड आंसर these questions that you're asking, these rhetorical questions, a lot of these questions, they need the answers more specifically.
Yes.
Otherwise, they'll go back thinking something else.
Yeah. Will you permit your wife to give directions to a man?
क्या आप अपनी पत्नी को अनुमति देंगे कभी किसी पुरुष को निर्देश देने के लिए? अब नहीं बोलेंगे.
नहीं
बोलेंगे.
Listen
carefully. Now they won't speak.
Listen carefully.
हाँ जी.
पावर है, कोई पावर है. काम है बस. पति बाहर जा रहा है, सत्ता आने पावर है ना.
अभी अभी बात करेंगे. यस, बाद में बात करेंगे आपसे. हम चाय के समय हम वहाँ नहीं रहते ना, हम लोग इंडिया में.
Listen carefully.
ध्यान से नहीं बात.
Context.
संदर्भ.
Scripture interpreting Scripture.
बचन ही बचन का अनुवाद.
What does Paul say?
पौलुस क्या कह रहा है?
In the church.
कलीसिया में.
A woman cannot be a pastor or an elder.
एक महिला अगुवान नहीं बन सकती, पासबान नहीं बन सकती. खत्म बात. पौलुस कह रहा है कलीसिया के संदर्भ में.
That's what Paul means.
यही पौलुस कहने का मतलब है.
Do you understand what we're saying?
हम समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं.
Context is the church.
संदर्भ कलीसिया है.
He's talking about the requirements and ministries of leaders.
वो कलीसिया के भीतर अगुओं की जिम्मेदारी, अगुओं के गुणों की बात कर रहा है. कलीसिया के भीतर.
There are two main things the elders are to do in the church.
और कलीसिया के भीतर अगुओं को दो मुख्य काम करने हैं.
They're to rule or to manage the church and they're to teach the church.
उनको कलीसिया में अगुवाई करनी, कलीसिया में अधिकार चलाना और कलीसिया में शिक्षा देना, दो मुख्य काम.
Paul says there's two things a woman cannot do in the church.
अभी पौलुस कह रहा है कलीसिया के भीतर दो चीजें हैं जो महिला नहीं कर सकती है.
So what's the conclusion?
तो इसलिए अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है जो पौलुस कह रहा है उसका?
A woman can't be a pastor or an elder.
तो एक महिला कलीसिया में एक पास्टर नहीं हो सकती है या अगुवा नहीं हो सकती है, प्राची नहीं हो सकती. खत्म. कलीसिया के भीतर.
Our first point.
पहली बात.
Elders are to rule and to teach.
फिर से बोलें दोबारा घूम करके. ठीक है. मरे हुए घोड़े बार बार चाबुक मार रहे, खड़ा के भागने लगे.
That's our major point.
मुख्य बात कलीसिया को.
Minor point.
पुरुषों को अगुवाई करनी है. दूसरी बात.
Women are not to rule and teach in the church.
पुरुषों को अगुवाई करनी है और शिक्षा देनी है. और दूसरी बात, महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी है, अगुवाई नहीं करनी है.
So what is our conclusion?
तो इसलिए अगर ये दो मुख्य बात बोली, पहली बात पुरुषों को अगुवाई करनी, शिक्षा देनी, महिलाओं को अगुवाई नहीं करनी, शिक्षा नहीं देनी, कहीं से भी, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है?
This is very simple. We call this logic.
ये बहुत साधारण बात है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में तर्क, लॉजिक हिंदी में तर्क.
लेकिन भैया चर्च में लागू होता है लेकिन घर में
अब आप अपने घर में जो चाहें वो करें, आप स्वतंत्र हैं, आप लीजिए निर्देश अपनी पत्नी से.
You have any specific questions on both the example or the interpretive principle?
He is asking, okay, so you are talking about the church. I think his objection was, आप कह रहे हैं कि ये अभी नहीं लागू होता, ये वहाँ के संस्कार के अनुसार था, हमारे पर लागू नहीं होता, आप ये कह रहे थे ना? So he is saying it doesn't apply on us anymore. It was cultural. At times have changed. It doesn't apply to us anymore.
Look at 1 Timothy and chapter 2.
पहला तिमोथियुस का दूसरा अध्याय को देखिए ध्यान से.
Verse 13.
उसके 13 पद को देखिए.
What principle is Paul arguing for?
अच्छा अब हमको बताइए, 13 पद को देखिए.
Is he saying this? Well, now in Ephesus, the present culture says a woman shouldn't teach a man just because that's the way it is.
क्या पौलुस 13 पद में ये कह रहा है? इफिसियों के शहर में समस्या ये है, वहाँ के लोग कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहिए, अगुवाई नहीं करना, ये कह रहा है.
But now times have changed and this is no longer applicable to our culture.
और फिर पौलुस कह रहा है अब समय बदल गया है, अब हमारे संस्कार पे, हमारे समाज पे ये लागू नहीं होता. क्या पौलुस ये कह रहा है वहाँ पे?
Is that what Paul says?
क्या ऐसा कह रहा है पौलुस वहाँ पे?
सेकेंड स्थान पे रखा.
किसको?
दूसरे स्थान पर स्त्री.
His argument is from creation.
लेकिन वहाँ पे पौलुस समय के हिसाब से नहीं सर्कल कर रहा है, वो जो कारण बता रहा है वो संस्कार को और संस्कृति को और सामाजिक कारण नहीं बता रहा है, लेकिन वो सृष्टि का उपयोग करके बता रहा है कारण. क्या कारण है?
God's creation transcends every and any culture.
क्या जिस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि की है वो हर एक संस्कार, हर एक संस्कृति, हर एक समाज, हर सामाजिक सोच के ऊपर है कि नहीं है?
Paul is not arguing from culture, he's arguing from creation.
पौलुस संस्कार या समाज या सामाजिक सोच या संस्कृति के आधार पे नहीं तर्क कर रहा, लेकिन पौलुस तर्क कर रहा है सृष्टि के आधार पे.
And if he argues from the timeless of principle of creation, it is applicable to all cultures.
तो आप इस बात को समझने की कोशिश करेगा, अगर पौलुस संस्कृति के आधार पर नहीं कर रहा है लेकिन सृष्टि के आधार पर कर रहा है, सृष्टि जो कि समय से बंधी हुई नहीं है और हर एक जगह पे हमेशा लागू होती है हर बात में, तो जो बात वो कह रहा है तो फिर वो हमेशा हर जगह पे लागू होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
सृष्टि में तो स्त्री पुरुष दोनों समान बनाए गए.
Yes, बिल्कुल सही है. छोटा बड़ा की बात ही नहीं हो रही, छोटा बड़ा की बात ही नहीं हो रही, आप गलत समझ रहे. तो पहले आदम बना था कि नहीं बना था? तो जो है तो है.
He is arguing before the fall of man in God's created order.
So he's trying to say in Genesis creation narrative, Adam and Eve are created equal. But here it looks like Adam is superior to Eve.
They are equal in their persons, they are distinct in their function and authority.
तो आप इस बात को समझने की कोशिश, जो मान आप कह रहे हैं वो अक्सर लोग तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं. दोनों परमेश्वर के सामने अपने महत्व में सृष्टि बराबर है, बराबर की बात नहीं हो रही है, लेकिन उनके कार्य फर्क है, जिम्मेदारियां फर्क है.
Galatians chapter 3.
गलतियों का तीसरा अध्याय.
In Christ Jesus there is neither male nor female.
गलतियों से तीसरे अध्याय में उसमें क्या लिखा है, वहां पे पौलुस बात करते कहता कि यीशु मसीह में ना तो नर है ना तो अब नारी है.
There is neither Jew nor Greek.
ना तो यूनानी है ना
तो यहूदी
है. There is neither
slave nor free.
ना तो दास है ना तो स्वतंत्र है.
What is he talking about?
गलतियों तीन अध्याय उसका
He's talking about in their relationship and standing before God. There are no distinctions, all are equal.
गलतियों से तीसरा अध्याय उसके 28 पद में जब बात कर रहा है कि कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा, तो किस मामले में कोई फर्क नहीं, किस मामले में कोई भेद नहीं है, यहाँ पे बात कर रहा है कि परमेश्वर के सामने रिश्ते में, परमेश्वर के सामने हम कैसे दिखाई देते हैं उस मामले में कोई फर्क नहीं है. उद्धार के मामले में, मुक्ति के मामले में,
God's created institutions of the home and the church, there is a distinction of function and position.
लेकिन परमेश्वर के सृष्टि के क्रम में जिस तरह से परमेश्वर ने निर्माण किया लोगों का, कलीसिया के भीतर और एक परिवार के भीतर फर्क जिम्मेदारियां हैं और फर्क अधिकार दिया गया है. बराबरी की बात नहीं, बराबर है अहमियत में, लेकिन फर्क अधिकार दिए गए, फर्क जिम्मेदारी दिए, फर्क कार दिए गए कलीसिया के भीतर और परिवार के भीतर. ये सृष्टि से ही परमेश्वर ने की नियति है.
Do you understand the difference?
क्या आप ये फर्क समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप भिन्नता, आप हल्का सा ये फर्क देखने पा रहे नहीं करें? बराबर परमेश्वर अहमियत एक ही, अहमियत में कोई नहीं कह रहा, कम ज्यादा की बात नहीं हो रही यहाँ पे. ऐसा नहीं कि औरतें बुद्धू होती हैं, कम होती हैं, आधी होती हैं, एक चौथाई होती है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे. ये नहीं, वो मूर्खता की बात है, उसकी बात को नहीं कर रहा. कार्यों में भिन्नता है, जिम्मेदारी मिलता है, और ना जानते हुए भी हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे समाज में अपने तरह से अपने आप भी ऐसे चलता है, और लेकिन उसको क्या कहते हैं, फिर हम दबाने लगते हैं उसको, हम दूसरे चरम स्थिति में, उसकी बात नहीं हो रही, बाइबल उसकी बात नहीं कर रहा.
What does Peter say?
पत्रस क्या कहते बताइए?
First Peter 3
पहला पत्रस का तीसरा
अध्याय verse 7
और उसके साथ अपन क्या
कहते हैं? You husbands live with your wife in an understanding way.
पहला पत्रस का तीसरा अध्याय के साथ अपन क्या लिखा है? हे पतियों, तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे.
As with a weaker vessel.
एक निर्बल पात्र जान करके.
Now listen carefully.
ध्यान से इस बात को.
That doesn't mean she is not equal to you.
यहाँ पे जब निर्मल निर्बल
that you are smarter than she is.
निर्बल बाबा की बात नहीं है, निर्मल निर्मल पात्र कहा गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा तेज दिमाग के हैं. यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है.
In fact, for some of your men, your wife may be much smarter than you are.
लेकिन वास्तविकता ये है कि आप में से अधिकांश लोगों की पत्नी आपसे ज्यादा बुद्धिमान होंगी.
Listen carefully.
लेकिन ध्यान से इस बात.
You are to grant her honor, he says, as a fellow heir of the grace of life.
लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है पत्रस, कि तुम्हें अपनी पत्नी को जीवन के अनुग्रह में संगी वारिस जान करके आदर करना है उनका.
She has the same salvation.
उनके पास वही अधिक,
she has the same,
वही उधार मिला उनको,
justification.
वही उसी तरह से वो भी धर्मी ठहराए गए.
She has the same standing before God as you do.
प्रभु के सामने जिस तरह से आपका स्थान है, वही उस तरह से उनका भी स्थान है, उसमें कोई फर्क नहीं है.
Unequal to you.
ऐसा नहीं कि आप हल्का सा ज्यादा है, वो हल्का सा कम है, ऐसा नहीं है.
In your relationship to God, you are fellow heirs of the grace of life.
और परमेश्वर से जो संबंध है उसमें वे संगी वारिस हैं आपके साथ, प्रभु के साथ में है परमेश्वर संबंध का.
God has appointed in the church and the home an order of position and authority.
लेकिन परमेश्वर ने घरों में और कलीसियाओं में एक क्रम रखा है जिसमें अधिकार अलग है और जिम्मेदारी अलग है. बस यही बात हो रही है.
Not because you are smarter than your wife.
इसलिए नहीं क्योंकि आप अपनी पत्नी से ज्यादा बुद्धिमान है, तेज.
Not because you are better than your wife.
इसलिए नहीं क्योंकि आप अपनी पत्नी से ज्यादा बेहतर भी हैं.
Not because you are more useful than your wife.
और इसलिए भी नहीं कि आप अपनी पत्नी से ज्यादा उपयोगी.
Not because you are more important than your wife.
और इसलिए भी नहीं क्योंकि आप अपनी पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं.
But God has put you in a position of responsible headship.
लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में एक जिम्मेदारी से भरा हुआ अगुआपन का काम दिया है, कार्य दिया है.
If Paul is arguing from culture,
अगर पौलुस संस्कृति या समाज के आधारित तरीकों से तर्क करता,
and if your wife says this,
और अगर आपकी पत्नी ये कहती है,
next Sunday I want to preach,
अगले रविवार को प्रचार करूंगी,
and you say that's okay,
और आप कहें कोई बात नहीं, करो करो ठीक है,
because Paul was speaking in that culture,
क्योंकि पौलुस जो है उस समय के संस्कृति की परंपराओं के अनुसार कह
रहा है. Now we have a different culture.
लेकिन अब हमारा समय बदल गया. हम
In fact, my wife is a better teacher than I am.
लेकिन मेरी पत्नी तो मुझसे ज्यादा बेहतर प्रचारक है.
So my wife's going to preach in the church next Sunday.
तो अगले संडे को मेरी पत्नी प्रचार करेगी.
Is that possible?
क्या ये संभव है?
Is that permissible?
क्या इसकी अनुमति है? क्या
Is that biblical?
क्या ये वचन पे आधारित है? लेकिन क्या होता है? लेकिन कई बार हमको मालूम नहीं, इसलिए भी होता है. हमको मालूम नहीं और हमको गलत सिखाया भी गया है, तो गलती कई बार लोग नहीं भी को मालूम है.
We're talking about proper interpretation and application of the word of God.
लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन की सही व्याख्या और सही लागू करना। अगर बाइबल कह रही है तो हमको मानना है कि नहीं मानना, यह हमको निर्णय करना होगा।
Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए।
In the writing of the apostles, a verse has one main meaning, but it may have multiple applications.
तो जब परमेश्वर के जब वचन को हम पढ़ते हैं तो जो लेखनी है उनके एक मुख्य अर्थ होता है, जो भी लिखा गया उसका एक मुख्य अर्थ होता है, लेकिन उसके लागूकरण कई हो सकते हैं। फर्क समझिए, समझे जो मुख्य अर्थ है वो एक है, एक बड़ा मुख्य मोटा मोटा मतलब एक होता है, लेकिन उसको लागू कैसे करेंगे अपने जीवनों में अलग अलग संदर्भ में वो अलग अलग होगा।